ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुणदलितां शिवशाखान्वितं च तमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शुभाशुभानवे देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुज भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनकारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत ध्वंत हारिणे Namo Guru Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambhujaya Denama Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Vara Shakti Surupaya Rupanagaraya Gauravir Bhavume Samirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannathaya Denama Panchakalpatarupesh Kripasindubhyevacha Pajidanam Bhavune Vyo Vaishnava Vyo Namo Nama Vandimavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Nama Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Sarupakam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namaswate Jayatam Sunato Bangor Mama Mandbana Teriyati Matsarva Svavadam Bhojo Shriyadha Madhana Mono Divya Drinda Aranya Kalpadramadha Srimad Ratnakara Srimasanastho Srimad Radha Srila Govinda Devo Krishtali Vishyagamano Smarami Srimad Rasara Sarambi Vansiya Prattadashyata Karsana Venu Sunayar Gopi Gopinata Shriyastana Taktakayanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jaisa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna तो आज हम श्रीमद् भागवतम की जगह लीलामृत का पाठ करेंगे तो पीछे के परिच्छेद में जब मैं देख रहा था उसमें श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का बहुत गुणगान करते हैं तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि उनका श्रवण में बहुत रुचि था श्रील प्रभुपाद जी का जब भी उनके गुरु महाराज कलकत्ता में रहते थे तो वो ऐसा उनका जो फार्मास्यूटिकल काम रहता था उनका जब वो तो ऐसा ट्रिप वो अरेंज करते थे कि उनके गुरु महाराज वहाँ पे रहे कलकत्ता में और उनको सुनने का मौका मिले ऐसे नहीं कि वो कुछ कंप्लेन करने जाते थे या देखने जाते थे गुरु महाराज वो सुनना चाहते थे अपने गुरु महाराज से इसलिए वो जब भी कलकत्ता जाते थे उन्होंने जो दीक्षा ली उसके बाद के चार साल वो कंटिन्यू 12 बार उन्होंने कलकत्ता गए तो हर बार वो उनके गुरु महाराज से सुनने के लिए गए इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनसे बहुत मतलब प्रसन्न थे और बहुत उनके उनके प्रति कंपैशन दिखाते थे भले ही वो उनके इतने निकटवर्तीय शिष्य नहीं थे ऐसा लगता था क्योंकि 18 सन्यासी थे प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य तो वो बहुत निकट थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली प्रचार में लगे थे और प्रभुपाद जी अपनी दवाई की कंपनी में लगे हुए थे और सब देख रहे थे मतलब लेकिन वो भक्ति भी कर रहे थे और प्रचार के लिए थोड़ा बहुत मदद भी कर रहे थे फिर भी जब भी प्रभुपाद जी उनसे मिलते थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनसे बहुत प्रेम से बात करते थे और श्रील प्रभुपाद जी भी भक्तिवदन स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी उनसे मतलब बहुत एक मित्र की तरह उनका व्यवहार रहता था कभी कभी एक बार क्या हुआ प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के रूम के बाहर वेट कर रहे थे तो सारे शिष्य अंदर बैठे हुए थे तो वो अचानक से अंदर गए और सीधा जिधर उनके गुरु महाराज बैठे थे उधर बैठ गए लेकिन उनको बाद में पता चला कि सब शिष्य उनके गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं और वो गलती से उधर बैठ गए लेकिन फिर वो उठे नहीं लेकिन उधर लिखा है कि अगली बार से वो कभी उनके गुरु के समान आसन पर नहीं बैठे क्योंकि ये एटिकेट है जहाँ पे हमारे गुरुजन या वरिष्ठ वैष्णव बैठते हैं उनसे थोड़ा नीचे के आसन में ही बैठना चाहिए ऐसा और फिर ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी चैतन्य मठ में भी उनको मिलने गए थे उनके गुरु महाराज को तो वहाँ पे उन्होंने आंगन में जब खड़े थे तो पीछे से उन्होंने एक बड़ा सांप देखा तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऊपर के कमरे में थे तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ दिया कि इस सांप को मार दो करके तो प्रभुपाद जी तभी कन्फ्यूज हो गए कि मेरे गुरु महाराज ने एक जीव को मारने के लिए कैसे मतलब बोला करके लेकिन फिर उन्होंने जब एक बार पढ़ रहे थे तो उनको एक श्लोक मिला वो कि सांप को और बिच्छू को मार सकती क्योंकि मार देना चाहिए उससे साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं जब सांप और बिच्छू को मारते। उसका मतलब क्या है कि सांप का अटेंडेंस क्या होता है, वो ईर्ष्या का प्रतीक है सांप। तो साधु ये ईर्ष्या जो है इसको कभी सहन नहीं कर सकते, करते ही नहीं, उसको सीधा कुचल देते हैं। इसलिए कोई भी गुरु महाराज हो या कोई भी वरिष्ठ वैष्णव हो, वो सामने के उनके सबऑर्डिनेट में ईर्ष्या देखना नहीं चाहते, इसलिए वो उनको ऐसा सेवा देंगे जो उसकी ईर्ष्या को दबा के रखे। ऐसा तो बहुत अच्छे अच्छे लेसन उसमें हमको मिलेगा। फिर जब प्रभुपाद जी अपना ये दवाई का कंपनी चला रहे थे, आप सब जानते हैं, तो उनको बीच में बहुत घाटा भी हुआ। क्योंकि घाटा इसलिए हुआ कि प्रभुपाद जी का सेलिंग तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन उनको वसूली करना नहीं आता था, क्योंकि भक्त थे ना, भक्त लोग बहुत सरल होते हैं। तो उनको जो बड़ा कंपनी था, कौन सा, बंगाल केमिकल्स करके कुछ, वो जो भारत का उस समय का सबसे बड़ा इसका फार्मास्यूटिकल कंपनी था, तो उन्होंने उनको ऑफर भी दिया था कि आप हमारे एजेंसी चलाइए। लेकिन प्रभुपाद जी का कुछ कंडीशन उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने वो नहीं किए वो काम, उनके साथ मतलब पार्टनरशिप नहीं किए। तो फिर प्रभुपाद जी का 10,000 से लगभग उनके पास कर्जा था उस समय के 10,000। तो उन्होंने जो उनका उधर का शॉप था अहमदाबाद का ना, कहाँ पे था, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का जो शॉप था उन्होंने उसको उस कंपनी को दे दिए जिससे वो मेडिसिन लेके आगे सप्लाई करते थे, ऐसा या कुछ बनाते थे बाकी। तो उन्होंने वो अपना शॉप दे दिया, तो फिर वो अभी बेरोजगार हो गए प्रभुपाद जी। तो जिस गौड़ी मठ में प्रभुपाद जी वहाँ पे जाते रहते थे, उनके गुरु अच्युतानंद ब्रह्मचारी करके वहाँ के वो इंचार्ज थे, वो प्रभुपाद जी को हमेशा बोलते थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए, आप फुल टाइम प्रचार सेवा करिए करके। क्योंकि प्रभुपाद जी जितने भी उनके क्लाइंट्स थे उनसे मिलाते थे कलेक्शन के लिए। प्रभुपाद जी अपना काम भी करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा कैसे कृष्ण भावना का प्रचार होगा उसके विषय में उनका चिंता रहता था। इसलिए जब भी उनके गुरु भाई आते थे उनको वो ऐसे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स देते रहते थे और खुद जाते थे उनसे मिलने, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो देते थे इस तरह के से। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी भी उधर ही थे उनके साथ, उनके गुरु महाराज के साथ रूम में, और एक यंग कपल आए उनके साथ, उनके शिष्य थे और उनकी वाइफ भी थी। तो वो बोले कि गुरु महाराज हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, वो जो लेडीज डिसाइपल थे उनके। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने आचरण से सिखा रहे थे कि कितना व्यक्ति को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने उनको बोले कि नहीं, आप सबके साथ मेरे से बात करें, मैं अकेले में नहीं मिलूंगा। भले उनका उम्र वहाँ पे 60 साल के लगभग था, मतलब वो जो युवती थी उनकी पोती जैसी थी, फिर भी उन्होंने नहीं, क्योंकि वो श्लोक है ना, मात्र आश्वर्ष्य अधोहित्रा वा क्या है, हाँ, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान अभिकर्षित। तो वो अपने आचरण से सिखा रहे थे, जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो ये सब स्क्रिप्चर्स के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया रहते हैं। तो वो अपने आचरण से सिखा रहे थे कि व्यक्ति कितना भी बुजुर्ग हो जाए, इवन प्रभुपाद जी का भी उदाहरण ना, श्रील प्रभुपाद जी का, उनकी बहन जब वो बीमार थे उनके वृंदावन में जो क्वार्टर्स में उनको मिलने आई थी, तो नवगंद स्वामी महाराज उनकी ऑफरिंग में बता रहे थे इस बार प्रभुपाद डिसिप्लिन में, कि प्रभुपाद जी बोले नवयुगंधर मेरे को छोड़ के कहा जा रहा है करके अकेले माया के पास। उनकी बहन थी, बहुत बुजुर्ग थी, लेकिन वो अपने आचरण से सिखाना चाहते थे, ऐसा नहीं कि माया है, लेकिन फिर भी। तो इस तरीके से ब्रह्मचारी को या किसी को भी साधक को बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इन मामलों में, इसलिए ऐसा। और भक्तिदान सरस्वती महाराज जो भी आर्टिकल वगैरह कोई लिखते थे उनके डिसाइपल, तो उसको कैसे चेक करते थे कि ये अच्छा है करके, उसमें कितनी बार चैतन्य महाप्रभु का और कृष्ण का नाम आया है। तो जितना ज़्यादा उसमें भगवान के नाम का उल्लेख है और जितना वो मतलब आर्टिकल भगवान के नाम का ग्लोरी बता रहा है, उसको वो एक्सेप्ट करते थे उनका न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए। क्या नाम था उसका, हाँ, बैक टू गॉड नहीं, कोई तो पत्रिका, कौन सा पत्रिका, हाँ, सज्जन तो उसने करके। तो उसमें तो अभी आज से पीछे का मैंने रिवाइज किया थोड़ा परिच्छेद, अभी आज का हम पढ़ेंगे। औषध के कारोबार में अभय चरण देव विख्यात हो गए थे। बोस की लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरी कंपनियां भी उन्हें अपना एजेंट बनाने चाहती थी। चाहने लगी थी। अभय को धनाढ्य बनने की आशा थी। तो बोस करके एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी था, उन्होंने प्रभुपाद जी को ऑफर दिया था कि आप हमारा एजेंसी या हमारे एजेंट बन जाइए करके। तो प्रभुपाद जी को आशा था कि मैं अभी धनाढ्य बन जाऊँगा, मतलब रिच बन जाऊँगा, लेकिन देखते आगे हम कि क्या होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोले फिर, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि तुम यह करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धनाढ्य बन जाऊँ तब मैं करूँगा। आरंभ में मैं सोचता मेरे शिष्य बंधुओं ने संन्यास ले लिया है, वे घर घर भीख मांग रहे थे, मैं भीख क्यों मांगू, अपने धन कमा लूँ, पहले धन कमा लूँ तब कृष्ण भावनामृत का प्रचार आरंभ करूँगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने उन्होंने उनको जो पहली मीटिंग में उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी, यू जस्ट बिकॉज यू आर लर्नेड यू कैन गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यू कैन प्रीच, मतलब आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कर सकते हो करके, आप पढ़े लिखे जवान हो। तो उस बात को मैंने टाला, बोलते प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और मैंने पहले सोचा कि मैं पहले रिच बन जाऊँ तो पैसा रहेगा तो अच्छे से प्रचार कार्य में भी हेल्प होगा। इस वजह से वो ऐसा सोच रहे थे क्योंकि उनके सन्यासी भाई जो थे गॉड ब्रदर्स, वो सन्यास लेने के बाद हर घर में जाके भिक्षा मांग रहे थे एक साधारण भिक्षुक की तरह। तो उनको वैसा नहीं चाहिए था, उनको तीव्रता से प्रचार करना था, सिर्फ भिक्षा में उनको समय नहीं गंवाना था, क्योंकि आगे लिखा है कि धन तो कैसे ना किसी प्रकार से आ ही जाएगा ऐसे, लेकिन प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि मैं भीख क्यों मांगू, पहले मैं धन कमा लूँगा तब मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार आरंभ कर पाऊँगा। तो भारत में दवाई बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बंगाल केमिकल ने अभय से एक प्रस्ताव किया, किंतु जब कंपनी ने उनकी सभी शर्तों को नहीं माना तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जैसे मैंने बताया। यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंपनी था, उनको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी को दुख भी हुआ, क्योंकि वो भगवान हर समय जो भी उनके पास लक्ष्मी आता था, धन आता था, उसको वो भगवान की सेवा में ही लगाते थे, गौड़े मठ के इसमें ही दे देते थे। तो भी लक्षण अच्छे थे, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे। प्रभुपाद जी कितना पॉजिटिव है, देखिए उनका थिंकिंग। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे, और डॉक्टर कार्तिक बोस ने उनके ससुर से कहा था कि वे बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति हैं। तो उनके आजू बाजू जो लोग रहते थे, उनके पार्टनर्स वगैरह, जैसे डॉक्टर कार्तिक बोस, वो लोग प्रभुपाद जी के लक्षणों से समझ रहे थे कि प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत डिवोशनल है, तो इसलिए वो अब उनके ससुर के पास भी उनका अप्रिसिएशन करते थे। लेकिन दूसरे प्रकार से लक्षण भी थे, मतलब दूसरे प्रकार से लक्षण क्या दिखाई दे रहे थे, प्रभुपाद जी को लग रहा था कि अभी सब ये जो आर्थिक परिस्थिति मेरा डामाडोल होने वाला है लग रहा है, क्योंकि वो जिधर भी प्रयास कर रहे थे आर्थिक प्रगति करने का, उधर उनको अपयश आ रहा था। अपनी विस्तृत यात्राओं से उन्होंने बहुत से ग्राहक बना लिए थे, किंतु बहुत भुगतान भी प्राप्त करने बाकी थे। बहुत से ग्राहकों से भुगतान आने में देर होने लगी। उधर अभय पर कर्ज बढ़ने लगा, बोस लेबोरेटरी के 10,000 रुपये उन पर चढ़ गए। तो जैसे मैंने बताया उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया 10,000 रुपये का, क्योंकि उनको जो भी ग्राहकों से लेना था वो उनको देना था, रूपा जी एक रिटेलर जैसे थे, तो उनके ऊपर कर्जा था वो भी 10,000 रुपये का। 10,000 उस समय में बहुत रहेंगे, लाखों में रहेंगे, 10 लाख के से 10 लाख या 1 करोड़ के आसपास रहेगा, क्योंकि 10-12 साल पहले हम लोग 5 पैसे में या 25 पैसे में कुछ भी खरीदने जाते थे शॉप पर, अभी 50 पैसे 1 रुपये भी नहीं चलते, 1 रुपये चलता है, 50 पैसे नहीं चलते। चारण तो लेकिन दूसरे प्रकार से वो पढ़ा हमने, उनके शत्रु भी थे। प्रभुपाद जी बोल रहे उन इधर सत्स्वरूप महाराज बोल रहे कि उनके शत्रु भी थे। जो व्यक्ति अभय के स्थान पर कलकत्ता में बोस लेबोरेटरी का मैनेजर बना था, क्योंकि बोस प्रभुपाद जी अपना जो फार्मेसी खोलने से पहले एक ये बोस लेबोरेटरी में मैनेजर थे, तो उनके स्थान पर जो दूसरा व्यक्ति आया मैनेजर के पोस्ट में, वो प्रभुपाद जी से बहुत ईर्ष्या करता था। वह डॉक्टर बोस को उनके खिलाफ भड़काने लगा, उसने बोस को भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी अभी मतलब ट्रैवलिंग करते थे, और उनका जो बोस का लेबोरेटरी का मेडिसिन को अपने एजेंसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अभी उनकी जगह पे वो मैनेजर था, भले भले प्रभुपाद जी डॉक्टर बोस के लिए काम कर रहे थे लेकिन प्राइवेटली कर रहे थे। तो वो बताने लगा कि ये अभी प्राइवेट खोल रहा है, अभी प्राइवेट मतलब खुद ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में है, ये कुछ भी कर सकता है। ऐसे ईर्ष्यावश वो भड़काने लगा डॉक्टर बोस को, जिनका प्रभुपाद जी एजेंसी संभाल रहे थे। तो उसने बोस को भड़काया कि अभय बहुत स्वतंत्र हो गए हैं, उनके बारे में सुना गया है कि वो बंगाल केमिकल से वार्ता चला रहे हैं, और जो इतना अधिक कर्ज उनके ऊपर हो गया है उसका कारण नए मैनेजर के अनुसार प्रधान कार्यालय के प्रति उनमें स्वामी भक्ति का अभाव है। तो जो डॉक्टर बोस का कार्यालय था वो हेडक्वार्टर जैसे था और प्रभुपाद जी का एजेंसी था। तो वो मैनेजर भड़का रहा था कि उसका स्वामी भक्ति मतलब जो हेडक्वार्टर के प्रति जो रिलेशन है वो मेंटेन नहीं कर रहे, अभी प्राइवेट बना रहे अपना एजेंसी को, इसलिए वो बंगाल केमिकल के साथ अभी अपना रिलेशन बना रहे, अपना मतलब एक क्या बोलते हैं पार्टनरशिप जैसे है, उनका एजेंसी लेने का अभी प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है अगर किसी दूसरे कंपनी के ओनर के पास आप जाके इस कंपनी में काम कर रहे हो और दूसरे के पास जाएंगे तो यहाँ का ओनर आपको चिल्लाएगा ही, आजकल देखा जाता है। तो वो भड़क गया लेकिन फिर भी उसको प्रभुपाद जी की ईमानदारी पर बहुत मतलब विश्वास था डॉक्टर बोस को। प्रयाग फार्मेसी में उनकी बात डॉक्टर घोष से हुई जिन्होंने कहा कि वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो प्रयाग फार्मेसी जो प्रभुपाद जी चला रहे थे उधर एक डॉक्टर घोष भी बैठता था, तो उसने प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बताया उनको कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति करके, वो उनका कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। विश्वास करके उन्होंने औषधि विक्रेताओं को दवाई या उधार पर दी लेकिन वे धन वसूल नहीं कर पा रहे थे। तो ये भक्तों का लक्षण है, थोड़े भोले ही रहते। तो प्रभुपाद जी उनसे धन नहीं वसूल कर पा रहे थे लोगों से, विश्वास करके उन्होंने दे दिया कि वो लोग दे देंगे करके पैसे। तो डॉक्टर बोस बोले बहुत ठीक लेकिन मैं उसे धन नहीं दे सकता। तो वो बोले ये सब ठीक है लेकिन फिर भी मैं अभी और उनको धन दे नहीं सकता करके। तो अभय ने कार्तिक बोस के साथ पूरा हिसाब किया, प्रभुपाद जी ने वो डॉक्टर के साथ पूरा हिसाब किया और दोनों सहमत हुए कि मामले को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि डॉक्टर बोस प्रयाग फार्मेसी और अभय का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लें। तो प्रभुपाद जी अभी डिसाइड कर लिए कि जो फार्मेसी है उनका एजेंसी वो उसको दे देंगे डॉक्टर बोस को, मतलब पूरा प्रॉपर्टी उनको दे देंगे। तो प्रभुपाद जी अभी क्या हो गए, बेरोजगार। इस तरह अभय कर्ज से तो मुक्त हो गए लेकिन बेकार भी हो गए। तो अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास गए जो उस गौड़ी मठ के कलकत्ता के शायद गौड़ी मठ के वो इंचार्ज थे, इलाहाबाद इसलिए मैं शायद बोल, उनके पास गए और बोले आप मठ में क्यों नहीं आ जाते, अब तो आप स्वतंत्र हैं। अभय निकटस्थ गोस्वामी मठ में और अधिक जाने लगे। गौड़ी मठ के ब्रह्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कृष्ण भावना भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए, संसार का त्याग कर दे और उनके साथ पूरे समय के प्रचारक बन जाए। तो भले ही उनको वो अतुलानंद ब्रह्मचारी भी फोर्स कर रहे थे और गौड़ी मठ से ब्रह्मचारी भी बता रहे थे कि आप फुल टाइम ज्वाइन कर लीजिए, तो किसी का नुकसान हुआ तो ऐसे सजेशन देते ब्रह्मचारी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था एक्चुअली। प्रभुपाद जी के दो दो बेटे थे और अभी एक तुरंत उनको एक संतान हुई थी, तो प्रभुपाद जी उसके बारे में सोच रहे थे कि उनको जिम्मेदारी ही करके वो संसार ऐसे छोड़ नहीं सकते, उनके ऊपर पूरा दायित्व है और इसलिए वो उसको स्वीकार नहीं करते, उनको टालते रहते हैं। लेकिन अभय के लिए कारोबार छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था, अगर वे ऐसा करें तो उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। उनके और राधा रानी के एक तीसरी संतान हो गई थी, राधा रानी उनकी पत्नी का नाम था प्रभुपाद जी के, वह लड़का था इसलिए उनका आर्थिक दायित्व बढ़ रहा था। संसार को छोड़ देने की जो राय ब्रह्मचारियों ने उन्हें दी उसमें उनकी नीयत अच्छी थी, ब्रह्मचारियों का नीयत अच्छा था कि कृष्ण भावना का प्रचार होगा और वो प्रभुपाद जी ऐसे भी डेडिकेटेड की तरह सेवा कर रहे थे तो और डेडिकेशन उनको कर पाएंगे वो संसार को अगर छोड़ देंगे तो। तो उन्होंने जो स्वयं ऐसा किया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी जो ब्रह्मचारी है उन्होंने भी अच्छी नीयत से डेडिकेट किया था अपना लाइफ, तो वह उनके लिए बहुत अच्छा था। परंतु अभय उनकी राय नहीं स्वीकार कर सकते थे, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल। बिना काम के वे कठिनाई में थे लेकिन उनका विश्वास बना रहा और कोई नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। देखिए प्रभुपाद जी का विश्वास कितना है, वो है ना अवश्य रक्षिवे कृष्ण, पूरा उनका दो तीन जगह उन्होंने हाथ पैर मारे थे, एजेंसी खोला था लेकिन सब चला गया, कुछ नहीं बचा, बेकार हो गए। मतलब लिटरली उनके पास अभी क्या आएगा कल, क्या कहाँ से पैसा आएगा, उसका कुछ सोर्स नहीं था। वो तीन तीन बेटे पत्नी, हाँ इतने जिम्मेदारी था, फिर भी प्रभुपाद जी का विश्वास था कि उनको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा करके रोजगार। अन्य कंपनियां भी थी जो उन्हें अपना एजेंट बनाने को तैयार थी, और उनके बहुत से पुराने ग्राहकों ने चाहा कि बॉस का आदमी हुए बिना भी अभय उनके समायोजक हो जाए। तो अभी कंपनियां उनको डायरेक्ट डीलरशिप देने के लिए रेडी थी, वो बोल क्योंकि बॉस के थ्रू, डॉक्टर बॉस के थ्रू प्रभुपाद जी पहले अपना एजेंसी चला रहे थे, तो उनका इतना विश्वास उन्होंने प्राप्त कर लिया था प्रभुपाद जी ने कि वो बोले कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं करके। तो अभय ने अपनी निजी औषधि निर्माण प्रयोगशाला खोलने पर विचार किया। अब तो प्रभुपाद जी का खुद का नहीं था, अभी खुद बिजनेस करने के लिए वो इतना इच्छा करते, कुछ है नहीं हाथ में फिर भी। तो अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वे अपना निजी कारखाना खोलेंगे, लेकिन इलाहाबाद से कहीं बड़े शहर बम्बई में। तो अभी प्रभुपाद जी इलाहाबाद से बम्बई शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि उनका परिवार इलाहाबाद में रहेगा और वे तथा उनके भाई बम्बई जाएंगे, तो एक कमरा लेंगे और वहाँ एक कारखाना शुरू करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण करेंगे। यद्यपि राधा रानी अपने पति की यात्राओं की अभ्यस्त थी, जो राधा रानी माता जी थे वो प्रभुपाद जी की यात्राओं से अभ्यस्त थे, क्योंकि वो कभी घर पे रहते नहीं थे, कभी वृंदावन तो कभी यात्राओं के, मतलब उनका फार्मास्यूटिकल काम के बहाने भी वो धाम में ही जाते थे, या कलकत्ता में जाएंगे, इलाहाबाद में जाएंगे, जहाँ पे उनके गुरु महाराज रहेंगे वहाँ पे जाने का वो प्लान करते रहते थे ऐसे। तो इसलिए वो ई वॉज हैबिचुअल, शी वॉज हैबिचुअल। लेकिन उनकी कोई यात्रा इतने दिनों की नहीं थी, ये बम्बई वाला यात्रा थोड़ा लंबा हो रहा था। जितनी बम्बई की यात्रा होने की संभावना थी, अभय ने उनसे बात की और बताया कि उनके धंधे में हाल के नुकसान को श्री कृष्ण का आयोजन मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं हमको कि जो भी नुकसान हुआ वो कृष्ण का आयोजन है, जैसे वो श्लोक है ना, यस्या मनु गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम क्षणे ततो धनम तजन तस्य स्वजनम दुःख दुःखे। तो यहाँ पे रघुनाथ प्रभु बता रहे थे एक बार कि इसका दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये यह अर्थ ले सकते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हाँ पहला अर्थ लेंगे जो हमको समझ में आ रहा है डायरेक्ट, कि धन मतलब जब भी धंधे में उनको नुकसान हो या धन उनके चला गया तो वो भगवान की कृपा मान रहे प्रभुपाद जी, या कृष्ण का आयोजन है, कृष्ण का प्लान है, ऐसे मानना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अब एक बड़ा धंधा आरंभ करना होगा, और वह बम्बई जैसे बड़े नगर में ही किया जा सकता है। लेकिन इलाहाबाद में पारिवारिक जीवन थोड़े समय के लिए भंग हो जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी बाहर रहेंगे बम्बई में, तो पूरा डिपेंड उनके ऊपर है पूरा परिवार, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे करके उनको पता है। उन्होंने दवाएं बनाने की एक बहुत छोटी इकाई इलाहाबाद में कायम करके अपने भांजे तुलसी को उसका भार सौंप दिया, और भाई के साथ वह बम्बई चले गए। अपने एक भाई को लेकर वो बम्बई चले गए और एक भांजे को वहाँ पे एक शॉप खोल लिया, मतलब उनका नाम वैसे ही बना रहे वहाँ पे। बम्बई में अभय ने ग्रैंड रोड पर एक कमरा किराए पर लिया, और बोस लेबोरेटरी के मैनेजर के रूप में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसका उपयोग करते हुए दवाएं बनाने का अपना एक निजी कारखाना स्थापित किया। तो प्रभुपाद जी ग्रैंड रोड में जो हमारा अभी एक मंदिर है राधा गोपीनाथ जी का, बहुत सुंदर मंदिर है, तो वहीं पे उन्होंने एक कमरा लिया, और जो उन्होंने जिनको एक्सपीरियंस मिला था बोस लेबोरेटरी में मैनेजर के तौर पे जब रहे थे, तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस को अभी अपने पर्सनल बिजनेस शुरू करने में यूज़ किए। उसी कमरे में रहते थे, उसी कमरे में उन्होंने दवाई का कारखाना भी शुरू कर दिया अपने भाई के साथ। तो धंधा अच्छा चल निकला था, जबकि स्मिथ इंस्टीट्यूट नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने सेल्स एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं चाही। तो अभी प्रभुपाद जी का बिजनेस सेटल हो रहा था, धीरे धीरे अच्छा चलने लगा, छोटे से कमरे से भी उनको अच्छा डिमांड आ रहा था, एक कंपनी भी उनको अपना एजेंसी देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी एजेंट बनाने के लिए। तो अभय ने वह स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि स्मिथ के एजेंट के रूप में वे पैसा कमा लेंगे और साथ ही अपने धंधे का भी विकास करेंगे। अभी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि प्रभुपाद जी हर समय पैसा कमाने के लिए सोच रहे, वो पैसा भी इसलिए कमाने सोच रहे कि उनका जिम्मेदारी भी है, उनको कृष्ण भावना का प्रचार भी करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हर समय वो धन के मतलब धन अर्जन के लिए बहुत कष्ट कर रहे, मेहनत कर रहे। दवाएं बनाने के धंधे से पैसा कमाने के बारे में उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास था, प्रभुपाद जी के ऊपर प्रभुपाद जी को विश्वास था कि वो कुछ कर सकेंगे, क्योंकि उनको उनके पास वो एबिलिटी था। धंधे के सिलसिले में बम्बई में यात्रा करते हुए अभय की भेंट गौड़ीय मठ के कुछ सदस्यों से, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी से हुई। तो आगे के लाइन में प्रभुपाद जी, वे ये दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे, जहाँ पे भी प्रभुपाद जी जा रहे थे उनको उनके गुरु भाई मिल रहे थे। तो ये एक्चुअली कृष्ण का प्लान ही था कि वो गौड़ीय मठ के कार्यों में ही बिजी रहे, और जिसे हम देखेंगे आगे बहुत बिजी हो जाते प्रभुपाद जी उनको हेल्प करने में। अभय ने उन्हें सम्मानित गुरु भाई माना, जो धर्मशास्त्रों और वैष्णव दर्शन के मर्मज्ञ थे। ऐसा लगा कि मानो अभय के भाग्य में था कि वे जहाँ भी जाएंगे उन्हें गुरु भाई मिलेंगे। उन्होंने और सन्यासियों ने इस प्रकार अचानक शहर में मिल जाने को शुभ माना। इलाहाबाद में मिले गौड़ीय मठ के सदस्यों की भांति ही इन प्रचारकों के पास भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था। तो उस जैसे हमारे पास अभी स्थायी केंद्र है, मंदिर भी है, लेकिन उन लोग के पास कुछ एक सेंटर भी नहीं था। इवन उनके रहने के वांदे थे, कहाँ रहेंगे सन्यासी डिसाइपल्स श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो कितने कष्ट वो करते थे प्रचार के लिए। लेकिन वे एक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से वे घर घर जाकर गौड़ीय मठ की बम्बई शाखा खोलने के लिए सहायक ढूंढ रहे थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जिस प्रकार उनको आज्ञा किया था कि आप घर घर जाइए, हर घर जाइए और मदद मांगिए, लेकिन प्रचार शुरू करिए, वहाँ पे एक ब्रांच खोलिए गौड़ीय मठ का, तो अभय सहायता करना चाहते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में एक साथी गुरु भाई होने के नाते वे अपनी सेवाएं उन्हें अर्पित करने को प्रस्तुत थे। देखिए प्रभुपाद जी की इतना विकट परिस्थिति है, अभी वो कुछ कमरा भाड़े से लेके शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ही इज सो डेडिकेटेड टू हिज गुरु महाराज एंड द सर्विस ऑफ कृष्णा कि वो हर समय उनको मदद करना चाहते हैं। हालांकि वो इतनी विकट परिस्थिति से वहाँ से आए हैं इलाहाबाद से, तो इससे हमको सीखना चाहिए कि हर एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति ये कर्तव्य होता है कि वो उनकी सेवा में हमेशा रत रहे। ऐसा नहीं कि अभी मैं मदद मतलब अभी तो डोनेशन दिया था, हर फेस्टिवल में हर एक व्यक्ति का इनिशिएटेड भक्त का जिम्मेदारी होता है। तो ये सन्यासी के रूप में वे दोनों अभय से ऊंची स्थिति में थे, लेकिन अपनी कुछ असहाय अवस्था में वे सहायता के लिए अभय का सहारा खोज रहे थे। वे प्रॉक्टर रोड पर एक छोटी सी जगह में ठहरे थे और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाने का अवसर उन्हें नहीं मिला था, तो वो बेचारे सिर्फ रह रहे थे वहाँ पे, सन्यासी थे सोचिए, फिर प्रभुपाद जी उनको मदद करेंगे। अब उन लोगों ने एक दल बनाया, तीन लोगों का टीम बनाया, श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद मतलब प्रभुपाद जी अभय, उनका परिचय कारोबारी लोगों से कराते और सन्यासी दोनों डिसाइपल उनसे नए केंद्र के लिए अनुदान लेते। तो अभय चरणारविंद चंदा इकट्ठा करते करने में दक्ष थे और उसके लिए स्वेच्छापूर्वक उन्होंने समय भी दिया। तो प्रभुपाद जी चंदा मतलब डोनेशन इकट्ठा करने में एक्सपर्ट भी थे, तो वो पूरा समय देते थे अपना उसमें। फिर उनके साथी गुरु भाई उन पर जोर डालने लगे कि वो गौड़े मठ के प्रचार में पूरी तरह सम्मिलित हो जाए। अभी यहाँ पे भी उनको प्रेशर आने लगा कि आप पूरी तरीके से फुल टाइम प्रचारक बन जाइए करके। फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमने दान एकत्र करने के लिए एक दल बनाया जिसमें श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज और स्वयं में तीन लोग थे। मैं उन्हें अपने कुछ दवा विक्रेताओं और डॉक्टर मित्रों के पास ले गया और दो दिन में हमने 500 रुपये इकट्ठा किए। सोचिए 10,000 से 500 कंपेयर कीजिए तो 5 गुना हो गया, 5% हो गया। तो 5% राशि वो 100% के लिए उनको पूरा उनका लैब भी सब बेचना पड़ा, तो 500 रुपये का कुछ वैल्यू है कि एक सेंटर खोल सकते हैं आराम से। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत मतलब अप्रिशिएट कर रहे कि 2 दिन में हम लोग 500 रुपये इकट्ठा कर ले करके। श्रीधर महाराज भाषण देते थे, प्रवचन देते थे। प्रभुपाद जी बोले, मैं परिचय कराता था और गोस्वामी महाराज, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज डोनेशन इकट्ठा करते थे और सबको रिक्वेस्ट करते थे कि आप डोनेशन करिए करके, उनको कन्विंस कराते थे। इस तरह गोस्वामी महाराज बहुत सराहना करने लगे और वे मेरे बारे में ऊंची बातें करने लगे। बाबू होकर वह बहुत दक्ष है। बंगाल में जो भी जो सम्मानीय व्यक्ति है उनको बाबू बोलते हैं, तो उसके इतने मित्र हैं और उसने इतना धन एकत्र कर लिया, हम उसे अपने मठ का कार्यवाह क्यों न बना दें, ऐसा सोचने लगे महाराज। तो वह हमारे साथ क्यों नहीं रहता, वह अकेले क्यों रहता है, इतने सारे प्रश्न उनसे पूछने लगे हर समय। तो अभय प्रॉक्टर रोड पर मठ का स्थान देखने लगे। बॉम्बे में प्रॉक्टर रोड कहाँ पे, क्या पता। तो वहाँ पे वो अभी प्रभुपाद जी हमेशा अपना काम करते समय भी गौड़ी मठ के विषय में इन्वॉल्व रहते थे। वो अभी जगह जब भी जहाँ पे भी जाते थे जगह ढूंढते थे मठ के लिए, गौड़ी मठ के लिए। तो वहाँ भक्तों के साथ वे कीर्तन में सम्मिलित हुए और उन्होंने भागवत पर उनके भाषण भी सुने। देखिए रोज प्रभुपाद जी भागवत सुनने भी जाते थे। सन्यासियों की प्रार्थना पर अभय ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ली कि बम्बई केंद्र के लिए अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। पूरा जिम्मेदारी लेते थे प्रभुपाद जी सेवा का, सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कर देंगे करके, पूरे जिम्मेदारी पूरा जगह ही ढूंढ के दे देंगे मंदिर। वे शहर में जहाँ भी जाते संभव स्थानों की बात उनके ध्यान में रहती। जैसे इलाहाबाद में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के कारण अपने साथी गुरु भाइयों की सहायता करना उनका कर्तव्य था। तो जिस प्रकार हमारा परिवार वालों के प्रति कर्तव्य होता है, उसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक रिलेशन होता है हमारे गुरु के प्रति, हमारे गुरु भाइयों के प्रति, सबके प्रति समान कर्तव्य हो जाता है हमारा। इसलिए प्रभुपाद जी इतना चिंतित रहते थे, उनको उनको मदद करने के लिए इतना आगे रहते थे, इतना विकट परिस्थिति में भी। न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना था, वरन उन्हें प्रचार में भी सम्मिलित होना था। लेकिन उनको लगता था कि वे सन्यासियों का जीवन कभी नहीं बिता सकेंगे जिसमें अपनी कहने को कुछ चीज ना हो, कोई धंधा ना हो, नंगे फर्श पर सोना पड़े बिना कुछ डाले, नीरा सादा खाना खाना पड़े, एकदम सिंपल खाना खाना पड़े। तो प्रभुपाद जी सोच रहे कि मैं कभी सन्यासी का जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो फरवरी 25, 1935 उस दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्मदिवस था। जगन्नाथपुरी में जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती निवास कर रहे थे, भक्तों ने उस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। तो उस दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में थे, उनके जन्म स्थान में ही थे। तो बम्बई केंद्र में जो थोड़े से भक्त थे उन्होंने संध्या काल को जलसा किया, फेस्टिवल मनाया और स्थानीय लोगों को उसमें आमंत्रित किया। इस अवसर के लिए अभय ने एक कविता लिखी, बहुत सुंदर कविता लिखी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के प्रति। तो उसको थोड़ा मृदंग पे बजाएंगे क्या, नहीं ऐसे ही गाए, छोड़ो ऐसे गाए। नमस्कार करो ओ लोगो, नमस्कार करो उस शुभ दिन को जो स्वर्ग से भी मंगलमय है, मई से भी अधिक मधुर है, जब वे प्रकट हुए पवित्र पुरी में मेरे स्वामी और गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति। ओ मेरे गुरु, सुख संवाद प्रचारक देवदूत, हमें अपना प्रकाश दो, अपना दीप प्रज्वलित करो। अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई मानव जाति एकमात्र आशा कृष्ण कृपा मूर्ति। हम प्रथभ्रष्ट है, मार्ग से भटके हुए, प्रभो हमें बचा लो, हमारी उत्कट प्रार्थना है। विस्मयजनक है आपके ढंग, हमें अपनी ओर उन्मुख करने हेतु प्रणाम करते हैं हम आपके चरणों को, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। भूल गए हैं कृष्ण को हम पतित जीव, इसी से हम भर रहे हैं माया का भारी कर, इसी से हम भर रहे हैं माया का भारी कर। चारों ओर अंधकार सब असूज, कुछ सूझ नहीं रहा है, आशा है केवल कृष्ण कृपा मूर्ति। संदेश सेवा का आप लाए हैं स्वस्थ जीवन का जैसा चैतन्य लाए थे, सबको अज्ञात यह बंधन युक्त है, यह आपकी भेंट है हे कृष्ण कृपा मूर्ति। परमेश्वर है इंद्रिया अनुभूति से युक्त, सिद्ध किया है आपने, तो परमेश्वर इंद्रिय अनुभूति से युक्त है, उसको सिद्ध कर दिया आपने, निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकरण किया है आपने, इससे पाया है जीवन नया स्फूर्तिमय हमने, अर्चन करते हैं आपके चरणों का हे कृष्ण कृपा मूर्ति। यदि आप न आते तो कौन बताता हमें, यदि आप न आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का शक्ति और साहस से भरा। आपका अधिकार है यह, दंड आपके हाथ है, मुझ पतित का उद्धार कीजिए हे कृष्ण कृपा मूर्ति। सेवा का मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा हर्षद और स्वस्थ है, प्रातः के निहार बिंदु की तरह। इतना सुंदर तुलना कर रहे हैं सेवा को प्रभुपाद जी, सुबह जो दो बिंदु होते हैं घास में वो कितना सुंदर दिखते हैं, उससे भगवान का सेवा का तुलना कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रातः के निहार बिंदु की तरह ये सेवा है, सेवा का मार्ग है, सबसे प्राचीन किंतु नित्य नए परिधान में किया अद्भुत कर्म हे कृष्ण कृपा मूर्ति। अभय चरण दास, इतना सुंदर कविता लिखा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कितने सुंदर कवि है, इसलिए उन्होंने भगवत गीता को बंगाली में कविता कविता के रूप में लिखा है। आप कभी पढ़ेंगे, पयार छंद के रूप में लिख दिया है प्रभुपाद जी ने। क्या बोलते हैं उसको, गितार गान, पूरा भगवत गीता का वर्सेस प्रभुपाद जी ने पोएट्री के फॉर्म में लिख दिया, हर एक श्लोक को बहुत सुंदर लिखा है, पढ़िए कभी। अभय ने एक भाषण की तैयारी की तैयार किया था, जिसे उन्होंने एकत्रित अतिथियों और गौड़ीय मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगाली थी, किंतु उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और सुबोध थी। तो अभी प्रभुपाद जी का भाषण पढ़ते हैं, उनके प्रति, उनके गुरु महाराज के प्रति उनका ऑफरिंग। सज्जनों, आचार्य देव की अभ्यर्थना का जो आयोजन आज शाम यहाँ किया गया है, वह किसी शाखा विशेष का नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव या आचार्य देव के मूलभूत सिद्धांतों की बात करते हैं, तो यह सर्वव्यापी सिद्धांत की बात होती है। इसमें मेरे गुरु, आपके गुरु या अन्य किसी के गुरु में भेद करने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसा जो भेद करता है वो अपराधी है, गुरु अपराधी, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्चुअली मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, वो उस गुरु का शिष्य है। एक बार हिजवल राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे लेक्चर में कि जब जब कोई शिष्य अपने गुरु का मतलब अपने गुरु के गुरु भाई का या किसी का भी निंदा कर रहा है, तो वो उससे उनके गुरु भाई मतलब राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि हम लोग ज़्यादा अप्रसन्न होते हैं उस शिष्य से, भले ही वो मेरा शिष्य हो। ऐसे तो इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम एक बार राधेश्याम प्रभु, इसके राधेश्याम प्रभु बता रहे थे लेक्चर में कि किसी भी गुरु के शिष्य के सामने हैं हम, गुरु भाई के सामने हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि हम सामने वाले के गुरु को अप्रिशिएट करें, ना कि हम हमारे गुरु का बखान करना शुरू कर दें। करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे पिता का हम बखान ना करें, लेकिन फिर भी हम दूसरे के भी गुरु का यह करना चाहिए गुणगान। और फिर ऐसा नहीं कि वो सामने वाला अपने गुरु का उसमें ऐड करे, उसको भी सामने वाले के गुरु के इसमें ऐड करना चाहिए कि उनके गुरु ऐसे महान हैं। तो इससे क्या बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम के हम यहाँ पे प्रेम भक्ति करने आए हैं, ईर्ष्या ईर्ष्या करके भक्ति नहीं हो सकता। ये निवड़ ईर्ष्या है, हम अगर किसी के गुरु का या मतलब किसी के गुरु भाई के प्रति हम ईर्ष्या कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ अपप्रचार कर रहे हैं, तो सावधान रहना चाहिए हमको। इससे हमारे गुरु ज़्यादा हमसे अप्रसन्न होंगे, ये सेवा नहीं होगा, ये गुरु अपराध होगा। दो प्रकार का अपराध होगा, ये उस वैष्णव को हम भटका रहे हैं उसके प्रति भी अपराध होगा, क्योंकि वो ये ईर्ष्या में फंस जाएगा, ये द्वंद्व में पड़ा जाएगा, और वो गुरु जिस जिसके हम शिष्य हैं उनके उनके प्रति भी अपराध होगा। तो दो अपराध हो जाएगा, उसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही सोला माला नहीं कर पाते हम, तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं आप, तो गुरु केवल एक है जो मुझे आपको और अन्यों को शिक्षा देने के लिए असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। गुरु या आचार्य देव, जैसा कि प्रामाणिक धर्म शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है, अद्वैत विश्व का संदेश देते हैं। मेरा आशय परम पुरुष के उस दिव्य लोक से है, जहाँ हर वस्तु बिना किसी भेदभाव के परम सत्य की सेवा में रत है, बिना किसी भेदभाव के परम सत्य की सेवा में रत है। कविता की तरह ही भाषण की व्यक्तिगत था, भाषण हो गया शायद, तो प्रभुपाद जी का कविता की तरह ही भाषण भी बहुत व्यक्तिगत था, बहुत पर्सनल थे प्रभुपाद जी, इसलिए इम्पर्सनल इसको फिलोसॉफी को इतना काटते थे प्रभुपाद। लेकिन कविता से भी बढ़कर वह अधिकार पूर्ण दर्शनिक प्रचार था। गुरु भाई अभय द्वारा वैष्णव दर्शन के ऐसे कौशल पूर्ण प्रस्तुतिकरण से बहुत प्रभावित हुए। यह कैसे संभव हुआ? उनके लिए यह कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सन्यासी लोग थे, उनको क्या आश्चर्य कि कोई अगर वैष्णव दर्शन इतना अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है, वो तो एक्सपर्ट है उसमें। लेकिन फिर भी वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने गुरु भाइयों की तरह ही अभय ने भी वैष्णव दर्शन के संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सुना था। गीता भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने और अपने आध्यात्मिक गुरु को सुनने के बाद भला अभय उनकी शिक्षाओं का आख्यान करने में समर्थ क्यों न होते? अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु को ध्यान पूर्वक सुन रहा है तो वो जरूर प्रचार करने में समर्थ हो जाएगा, क्योंकि दैट गुरु विल गिव हिम दैट एबिलिटी। उनके गुरु उनको उनके श्रवण के जितना उनका श्रवण में शरणागति है, वो शरणागति उनको उस बोलने में, उस प्रचार कार्य में, कृष्ण के प्रचार में उसको समर्थ बना देगा। इसलिए उसमें कोई डाउट ही नहीं है ऐसे बोल रहे। तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं था। क्या वे परंपरा के भक्त नहीं थे? लेकिन उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि वे अंग्रेजी में इतनी दक्षता से प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी पहली बार उधर अंग्रेजी में बोले थे, इसलिए किसी को पता नहीं था कि प्रभुपाद जी इतना इफेक्टिव बोलते हैं करके। इसलिए यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कोई मतभेद नहीं है, तो गुरु भी दो नहीं हो सकते। गुरु भी दो नहीं हो सकते। नित्यानंद प्रभु ही और एक्चुअली गुरु तत्व है, बाकी सब उनके रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए सबको उन्हीं की तरह आदर देना चाहिए और उसी से हमारा भक्ति में प्रगति होगा। जिन आचार्य देव की विनम्र अभ्यर्थना के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, वे किसी शाखागत संस्था के सत्य की विभिन्न व्याख्या करने वाले बहुत से गुरुओं में से एक नहीं है। बोल रहे कि किसी ब्रांच वाइज या किसी सेंटर वाइज डिवाइड नहीं हो गए वो गुरु, इस सेंटर के ये गुरु हो गए ऐसे। वो क्या है, वो सत्य की विभिन्न व्याख्या करने वाले बहुत से गुरु में से एक नहीं है। वो परम गुरु के मतलब नित्यानंद प्रभु के ही रिप्रेजेंटेटिव है। प्रत्युत वे जगत गुरु है या हम सबके गुरु हैं, अंतर केवल यह है कि कुछ पूरे तन मन से उनकी आज्ञा मानते हैं, जबकि दूसरे उनकी आज्ञा का प्रत्यक्ष पालन नहीं करते। तो ऐसे शिष्य है, अभी हम क्या कर सकते। अभी मैं कभी मेरे गुरु का आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूँ, क्योंकि इतने मैच्योर नहीं। इसलिए हमको काउंसलर से काउंसलिंग करना चाहिए, मतलब सलाह लेना चाहिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। तो क्योंकि हर एक शिष्य का अलग अलग ये होता है। तो और पढ़ेगा बहुत है भाषण प्रभुपाद जी का, बीच बीच में पैराग्राफ दिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। टाइम हो गया, एक मिनट बाकी, और थोड़ा पढ़ लेते। जिस गुरु के संबंध में अभय बोल रहे थे, निश्चय ही वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, धर्मशास्त्रों के मूल संग्रहकर्ता व्यासदेव के प्रतिनिधि। अभय ने समझाया कि किस प्रकार श्री कृष्ण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया था। ब्रह्मा से वह ज्ञान नारद को मिला, नारद से व्यास को, व्यास से मध्व को। चूंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैदिक ज्ञान को बिना किसी टीका टिप्पणी के यथा परंपरा प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए वे ही सच्चे गुरु थे जो लोगों को वेदों के प्रमाणिक ज्ञान से लाभान्वित कर रहे थे। अभय ने कहना जारी रखा और कह रहे प्रभुपाद, सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अधूरा है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं, हमारे साधन इतने सीमित हैं कि हमारे लिए परम धाम का रंच मात्र भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक कि हम श्री व्यासदेव या उनके सच्चे प्रतिनिधि के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित न कर दें, तो क्योंकि हम बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। वो क्वालिफिकेशन कब प्राप्त कर पाएंगे? जब किसी ऑथराइज गुरु के, बोनाफाइड गुरु के हम शरण ग्रहण करेंगे। अभय ने व्याख्या की कि भारत को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हजारों वर्षों से है, और यह ज्ञान यद्यपि इस समय वह धुंधला पड़ गया है, संसार को भारत की वास्तविक भेंट है। तो ये ज्ञान भले ही यहाँ पे अभी धुंधला पड़ गया है, आध्यात्मिक ज्ञान भारत में, लेकिन उसका सोर्स तो भारत ही है। इसलिए भारत को भारत को एक सांस्कृतिक देश माना जाता है, जहाँ पे अभी भी संस्कृति का पालन किया जा रहा है। तो अभी ये बाकी का आगे पढ़ेंगे अगले के समय, अगले एकादशी को। 9 भी बज गए। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओ मेरे थोड़ा बोलने में अटकता हूँ तो टॉलरेट किया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
आगे से रिकॉर्ड होते हैं।